मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, अपने पिछले एपिसोड में मैं मूल्यों को लेकर पीढ़ियों के बीच जो अंतराल आ गया है, जो टकराव की स्थितियां बन गई हैं, उस पर कुछ बातें आप सबसे की थी। और साथ ही साथ मैंने यह अनुरोध भी किया था कि बेहतर होगा आप सब भी अपने अपने अनुभवों के स्तर पर इस पर विचार करें, फिर चाहे आप किसी भी पीढ़ी के क्यों न हो। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी पुरानी पीढ़ी के हैं तो आप अपने पक्ष के बारे में सोचेंगे, और यदि आप नई पीढ़ी के हैं तो आप अपने पक्ष के बारे में सोचेंगे। और सच पूछिए तो सोचने का हमारा यह जो तरीका होता है अपने पक्ष के बारे में, यही टकराव का मूल कारण होता है। लेकिन फिर भी यदि हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से इस समस्या पर बात करना चाहें तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जो नए मूल्य बन रहे हैं, डेफिनेटली सभी मूल्यों को आप ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं कर सकते, उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते, लेकिन जो मूल्य बन रहे हैं उन्हें आउटराइट सीधे सीधे आप रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। क्योंकि मूल्य तो बनेंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलेंगी, वैसे वैसे नए मूल्यों का सृजन होगा ही होगा। और ये जो नए मूल्यों का सृजन होगा, हो सकता है कि पुराने मूल्यों के बिल्कुल विपरीत हो। और जब ऐसी स्थिति आती है तो जाहिर है कि टकराव होना ही होना है। लेकिन जो हमारी चेतना है, जो भारतीय चेतना है, उसकी देखिए कि जो पाचन शक्ति है वो कितनी विशाल है। इसके बारे में मैं एक आप सबके सामने उदाहरण रखना चाहूंगा, और यह एक ऐसा उदाहरण है जिसके बारे में आप सब जानते हैं, भले इस रूप में आपने इस पर विचार न किया हो। हमारे आराध्य हैं राम और हमारे दूसरे आराध्य हैं कृष्ण। ये दोनों हमारे ईश्वर हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमारे भगवान हैं। दोनों के बारे में हमारे पास कुछ साहित्य उपलब्ध हैं। एक साहित्य आप रामायण और रामचरितमानस को कह लीजिए, और जो कृष्ण से जुड़ा साहित्य है उसमें आप भागवत और महाभारत को ले लीजिए। इन दोनों से जुड़े हुए ये हमारे साहित्य हैं। और जब भी हम राम और कृष्ण के बारे में बातें करते हैं तो बात करने का हमारा आधार क्या होता है? हमारे ये ही साहित्य, दूसरे साहित्य भी इसमें मिल चुके हैं लेकिन ये इनसे जुड़े हुए मूल साहित्य हैं। अब आप एक काम कीजिए कि राम को एक तरफ रख दीजिए और ठीक उनके सामने आप कृष्ण को रख दीजिए। दोनों के समय में अंतर है, काफी अंतर है, ठीक है। अब आप राम के चरित्र को देखिए और आप कृष्ण के चरित्र को देखिए, दोनों के चरित्रों की तुलना कीजिए। और जब मैं चरित्र की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब मूल्यों से है कि राम किन मूल्यों की वकालत करते हैं, वो किस तरह के मूल्यों का जीवन जीते हैं, और दूसरी ओर है कृष्ण, वे किस तरह के मूल्यों का पक्ष लेते हैं और किस तरह के मूल्यों का जीवन जीते हैं। जब आप इन पर थोड़ी सी भी गंभीरता के साथ विचार करेंगे और खासकर तटस्थ होकर के सोचेंगे तो आप भौचक रह जाएंगे। एक दूसरे के आप कहीं ना कहीं विरोधी इन दोनों को पाएंगे कि राम क्या कर रहे हैं, कृष्ण क्या कर रहे हैं, राम क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं, बावजूद इसके दोनों हमारे लिए भगवान हैं। अगर हमारी चेतना एक ही मूल्य पर अटकी रहती तो सीधी सी बात है, या तो राम हमारे भगवान होते या कृष्ण हमारे भगवान होते, दोनों तो नहीं हो सकते थे। इसलिए क्योंकि दोनों के मूल्यों में कोई थोड़ा बहुत अंतर नहीं है, यहां मामला 19-20 का नहीं है, यहां मामला तो 15 और 25 का है, एकदम ही विपरीत कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से खड़े दिखाई देते हैं। इसके बावजूद हम दोनों की आराधना करते हैं, दोनों की पूजा करते हैं, दोनों के मंदिर बने हुए हैं और दोनों के आचरणों का हम अनुसरण भी करते हैं। सोचने की बात है कि हमने ऐसा क्यों किया। जब आप विचार करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके सिवाय कोई दूसरा सटीक उत्तर मिल सकता है कि हमारी जो चेतना है वो बहुत लचीली है, वो नए मूल्यों को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये बात अलग है कि जो नए मूल्य बन रहे हैं हम उस समय उनके विरोध में खड़े हों, क्योंकि ऐसा तो होगा ही, लेकिन कुछ समय के बाद वे जो नए मूल्य हैं हमारी चेतना से इस तरीके से घुल मिल जाते हैं कि फिर वो अलग से दिखाई नहीं देते, उनके विरोध में हम अपनी कोई बात नहीं रखते, और अगर रखते भी हैं तो एक समीक्षा के तौर पर। बस राम और कृष्ण में अभी भी तुलना होती है, दोनों का मूल्यांकन होता है, लेकिन मूल्यांकन के आधार पर ऐसा नहीं होता हम निष्कर्ष के रूप में कि हम एक को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे को खारिज कर देते हैं। नहीं, कहीं कृष्ण ऊपर राम से दिखाई देते हैं तो कहीं राम कृष्ण से ऊपर दिखाई देते हैं। तुलना में बस हम इतना ही करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को स्वीकार कर रहे हों और किसी को पूरी तरह से अस्वीकार कर रहे हों। इस निष्कर्ष पर हमारी चेतना नहीं पहुंच पाई है और पहुंचेगी भी नहीं, क्योंकि हमारी जो चेतना है वो बहुत लचीली है। वो चीजों को एब्जॉर्व करने में विश्वास करती है, तोड़ने में नहीं, रिजेक्ट करने में नहीं। और मुझे लगता है कि हमें अपनी चेतना की इस महानता पर, इस ग्रेटनेस पर गर्व होना चाहिए, और इस गर्व के आधार पर फिर सीधी सी बात है कि जो नए मूल्य विकसित हो रहे हैं उन्हें पचाने की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। तो दोस्तों आज बस इतना ही, कल के बाद परसों आप सबसे मुलाकात होगी। कल रक्षाबंधन का पर्व है, तो मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप इस त्यौहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। परसों फिर आप सबसे मुलाकात होगी और बातें होंगी। मुझे इजाजत दें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।